ओम शांति। तो आप सब घाट के ऊपर से आए हुए बाबा के बच्चों को मेरा बहुत बहुत याद प्यार। घाट के ऊपर सेंटर में बहुत पुराना केंद्र है, वहाँ हम कई बार गए हैं काकू भाई के टाइम से, और सारे उनके परिवार से हमारा बहुत स्नेह रहा है, नलिनी बहन के परिवार से। और मुझे याद है बहुत पहले 1973 में, पिछली सदी में, एक कुंभ मेला हुआ था हरिद्वार में। उसमें हम सब काकू भाई, मैं और सारे बहन भाई गए थे, और वहां हमने यज्ञ की पहली साइलेंट फिल्म बनाई थी। साइलेंट फिल्म अर्थात काकू भाई उसमें सेठ बने थे, और जो वहां साधु आदि होते थे ना तरह तरह के, तो उनके हमने चित्र लिए थे, ऐसे गंगा जी के अंदर मैले कपड़े धो रहे हैं, ऐसे गंगा जी के अंदर गंदा नाला मिक्स हो रहा है, ऐसे साधु तंबाकू पी रहे हैं, साधु तरह तरह का वो फिल्म हमने बनाया था। उसमें आवाज तो था नहीं, मूवी फिल्म वहाँ उनका एक होता था रिश्तेदार, मैं नाम भूल गया, वो कैमरा चलाता था। फिर हमने पांडे भवन में आकर वो फिल्म दादियों को दिखाई थी, और साथ साथ हमने कमेंट्री की थी कि क्या चीज कहाँ है। तो पहली फिल्म वो हमारी बनी थी, और उसके बाद तो हमारा कई बार उस सेंटर पे आना जाना हुआ। तो आप सब उसी केंद्र के भाई बहन आज मधुबन में देखो हमसे मिल रहे हैं, और मधुबन एक ऐसा स्थान है बाबा ने बनाया है, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ तीर्थ, जहाँ सारे वर्ल्ड से यात्री आते हैं, रूहानी यात्री, और आकर के मिलते हैं। तो प्यारे ब्रह्मा बाबा, ये आजकल हम दिवस मना रहे हैं, उनकी स्मृतियों के दिवस मना रहे हैं, और उनसे हम समर्थि प्राप्त कर रहे हैं। तो जैसे कहा जाता है कि स्मृति से समर्थि होती है, हम सब जानते हैं, जो भी व्यक्ति होता है वो कितना समर्थ है, उसको कितनी खुशी है, कितनी चिंता है, जो कुछ भी है उसकी स्मृति के आधार पर होता है। मान लीजिए कोई करोड़पति व्यक्ति है, तो करोड़पति व्यक्ति अपना करोड़ धन जो है जेब में डाल के तो नहीं चलता, कहीं ना कहीं रखा होता है, लेकिन उसकी स्मृति है कि मैं करोड़पति हूँ, इसलिए वो चलते फिरते सोते जागते, उसको ये नशा स्मृति के आधार पर रहता है कि मैं करोड़पति हूँ। तो इसी प्रकार से जीवन के अंदर जितने भी व्यक्ति के अंदर समृद्धि आती है उसका आधार स्मृति होता है। मान लीजिए एक व्यक्ति आपके मेडिटेशन हॉल में बैठा है, और उसकी कार बाहर खड़ी है, अच्छा उसकी स्मृति में है कि मेरी कार बाहर खड़ी है। मान लो उसकी कार चोरी हो गई, पर उसको किसी ने बताया नहीं कि तेरी कार चोरी हो गई, वो मेडिटेशन हॉल में बैठा मेडिटेट कर रहा है, तो उसको यही रहेगा कि मेरे पास वो कार है। जब कोई उसको बताएगा और उसकी स्मृति चेंज होगी, तब उसको उसकी समर्थी भी घटेगी, कह रहे मेरी कार कहाँ गई। इसी प्रकार से सब चीज बाबा कहते हैं अपनी स्मृति में अपना सारा कुछ रखो, ब्राह्मण जीवन की सारी बातें स्मृति में रखो, और कलयुगी जीवन की सारी बातें भूल जाओ। इसलिए बाबा कहते हैं इस ज्ञान में कुछ भूलना भी होता है और कुछ याद करना भी होता है। जो चीजें हमको सुख देती हैं, शांति देती हैं, आनंद देती हैं, उनको याद रखना है, और जो नहीं देती हैं उनको बुद्धि से जैसे मिटा देना। तो आज हम प्यारे ब्रह्मा बाबा की स्मृतियों के दिन मना रहे हैं। तो ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि मेरी स्मृतियों से जो कुछ भी आपको प्राप्ति होती है वो आपको समर्थी देगी। तो ब्रह्मा बाबा ने कैसे इस यज्ञ को शुरू किया, कैसे इस यज्ञ को चलाया, कैसे इस यज्ञ को बढ़ाया और आज भी अव्यक्त रूप से बढ़ा रहे हैं, आज भी हम सबको शिक्षा दे रहे हैं। बहुत से भाई बहन तो अव्यक्त बाबा के समय में ही जन्म लिया है, अव्यक्त बाबा से जन्म लिया है। तो वो सारी जो कुछ बाबा का, जिसको कहते हैं ना इनहेरिटेंस है, बाबा का वर्षा है, वो भी हमें शक्ति देता है। एक तो अपनी प्रसारथ की शक्ति है, जैसे किसी व्यक्ति का अपना कमाया हुआ धन है, और एक बाबा के वर्षे की शक्ति है। क्योंकि उसको जब अपने पेरेंट्स का किसी का इनहेरिटेंस मिलता है वो भी उसके कमाई में ऐड हो जाता है। आज हम बाबा के कुछ संस्मरण जो हैं याद करेंगे। तो जहाँ तक मेरे साथ बाबा के संस्मरण है, मैं तो वही बता सकता हूँ। कहा जाता है कि जो पावन आत्माएं होती हैं, श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं, उनके संग में आने से व्यक्ति अपने दुख दर्द, अपनी सारी चिंताएं भूल जाता है। तो इसका एक अनुभव मैं ब्रह्मा बाबा के साथ आपको सुनाता हूँ। उन दिनों में मैं पंजाब में रहा करता था, पंजाब में मैं जॉब भी करता था। तो पंजाब से माउंट आबू आने के लिए उन दिनों में आपको एक तो ट्रेन पंजाब से दिल्ली तक आती थी, दूसरी दिल्ली से आबू रोड तक आती थी, और उन दिनों कोयले की ट्रेन होती थी, कोयले का इंजन होता था, ट्रेन के सब कंपार्टमेंट की खिड़कियां खुलने वाली होती थी, और ट्रेन इतनी तेज नहीं चलती थी जितनी आजकल चलती है। तो काफी समय ट्रेन लेती थी और व्यक्ति का सारे कपड़े काले हो जाते थे, क्योंकि तो कोयले का जो चूरा होता है धुएं के द्वारा वो खिड़कियों के द्वारा पैसेंजर पर पड़ता था। तो उसी स्वरूप में मैं आबू रोड में आया कोई 10:30-11 बजे, और वहां से मैंने बस किया, क्योंकि मैं इकोनॉमी का विश्वास करता हूँ। तो बस करके मैं माउंट आबू आया, और बस के बाद आश्रम तक आने के लिए एक बच्चा गाड़ी होती थी जिसमें लोग सामान रख देते थे और पैदल चलते थे। उस प्रकार करते कराते मैं पांडव भवन माउंट आबू में लगभग दोपहर को 2 बजे के करीब पहुंचा। तो वहां मुझे एक कमरा है जिसको एरोप्लेन कहते हैं। आप जानते हैं, जिन्होंने पांडव भवन देखा है, आप तो ज्ञान सरोवर आए हैं, पांडव भवन जरूर देखने गए होंगे। तो वहां पर 2 गुंबज हैं ऊपर पीछे जाकर, तो उनको 2 गुंबज को एरोप्लेन कमरे कहते हैं। तो मुझे एरोप्लेन कमरा अलॉट किया गया और मैं सीढ़ियां चढ़ के उस कमरे में पहुंचा। आप सोच सकते हैं कि कब का पंजाब से चला हुआ मैं, और सब भाई बहन भोजन करके दोपहर का अपने अपने कमरों में जा चुके थे, किचन लगभग खाली था। तो मैंने सोचा मैं इतना थका हुआ हूँ तो मैं अपने कमरे में जाता हूँ, 2-3 घंटे लेट करके शाम को चाय पीने के लिए नीचे आऊँगा। तो इसी इरादे से मैं एरोप्लेन में पहुँचा, और उन दिनों में हम अपने अपने बिस्तरे होल डाल लाया करते थे, क्योंकि ट्रेन में आजकल जैसी फैसिलिटीज नहीं थी। तो मैंने अपना होल डाल भी नहीं खोला, वहाँ जो बेड पड़ा था उसमें ड्रेस पहने हुए जूते सहित मैं लेट गया। इतना थका हुआ था कि मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ। अब थोड़ी देर के बाद जो ही मैं लेटा था तो लकड़ी के खड़ाओं की आवाज आई। ब्रह्मा बाबा लकड़ी का खड़ाओं पहनते थे और वो सीढ़ी चढ़ रहे थे एरोप्लेन की तरफ आने के लिए। तो मैंने सोचा बाबा आ रहे हैं, आवाज मुझे आई और बाबा के साथ दो तीन बच्चे हर वक्त रहते थे जिनको बाबा ज्ञान सुनाते जाते थे और अपना दिनचर्या भी करते थे। तो बाबा आ रहे हैं तो मैंने अपने आप को देखा कि मेरा तो सारे कपड़े काले भूत की तरह है और मैंने जूता भी नहीं खोला, तो मैं जल्दी से कमरे के बाहर आके खड़ा हो गया कि बाबा कहीं मेरे कमरे में आ गए तो कहेंगे देखो कैसे पड़ा है ये। तो बाबा ऊपर आए छत पर और ज्ञान सुना रहे थे बच्चों को, साथ लेकर के जो पानी की टंकी होती है वहां गए, पानी की टंकी को खुलवाया। बाबा देखने आए थे कि पानी की टंकी में जंक तो नहीं लगा हुआ, तो बाबा वहां खड़े होकर ज्ञान देने लगे कि देखो बच्चे जैसे ये टंकी को जंक लग जाता है ऐसे ही आत्मा को भी जंक लग जाता है, तो टंकी का जंक जो है घासलेट, बाबा केरोसिन ऑयल को घासलेट कहते थे, तो घासलेट से साफ किया जाता है, ऐसे आत्मा का जंक भी ज्ञान घासलेट से साफ किया जाता है। तो टंकी को इंस्पेक्ट करने के बाद बाबा, मैं भी उसमें आके खड़ा हो गया था, जो दो चार भाई बहन थे, बाबा ने मुझे आत्मा को देखा, बच्चे आए हो और कह करके बाबा चले गए। अब बताना मैं ये चाहता हूँ कि जो व्यक्ति डेढ़ दिन के ट्रैवल से, रात के ट्रैवल से थका हुआ था और ऐसे लेटा था कि उठ भी नहीं सकता, उसके बाबा के जाने के बाद मैं बिल्कुल हल्का हो गया, बिल्कुल फ्रेश हो गया और उसी वक्त मैं दो दो सीढ़ी नीचे जा कर के अपना चाय बनाया और उसके बाद मुझे रेस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो आप देख सकते हैं कि बाबा लाइट, और लाइट के कारण से हम भी लाइट हो गए और हमारी सारी शारीरिक थकावट, मानसिक थकावट दूर हो गई। तो ये मैं आपको सुना रहा हूँ बाबा के संग का कितना प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से अब तो वो दिन स्मृतियों में ही रह गए, हमें तो पता नहीं था कितनी जल्दी वो दिन पूरे हो जाएंगे, पर वो दिन थे बहुत प्यारे। पहली बात यह है कि बाबा हर वक्त बहुत ही उमंग उत्साह में रहते थे। शायद ही कोई ऐसी घड़ी हो जिसमें आप बाबा को साधारण तरीके से व्यवहार करता हुआ देखें, हर काम में आगे, हर काम में उमंग उत्साह से। तो सुबह सुबह बाबा हम बच्चों को चाय पिलाया करते खुद, तो एक बहुत बड़ी केतली टेबल पर रखी जाती थी और हम सब बच्चे बाबा के आगे अपना कप लेकर जाते थे और बाबा हमारे कप में चाय डालते थे। लेकिन डालते कैसे थे, सामान्य तौर पर नहीं, लो बच्चे लो बच्चे, यानी उसमें भी बाबा के बोलने से ही हमारे में अंदर जैसे उमंग गुस्सा भर जाता था। इसी प्रकार से जो भी कार्य बाबा करते थे उसमें उमंग गुस्सा होता था। शाम के समय बाबा वहां पर जहां अब कपड़े प्रेस होते हैं पीछे की तरफ किचन के साथ, वो वहां पर उसके आगे थोड़ा ग्राउंड था, तो ग्राउंड में बाबा बच्चों को बहलाने के लिए ये शटल कॉक, चिड़ी छिक्का जिसको कहते हैं, वो खेलते थे। तो एक तरफ सारे बच्चे हो जाते थे और एक तरफ अकेले बाबा होता था। तो बाबा इतनी पावर से रैकेट चलाते थे, लो बच्चे लो बच्चे, तो सब बच्चे भागते रहते थे। तो हम ये देखते थे कि बाबा के अंदर इतना उमंग, इतना उत्साह, इतनी शक्ति है कि हम तो ऐसे नाचते रहते थे। इसी प्रकार से हर चीज के अंदर बाबा का उमंग होता था। सुबह के वक्त क्लास पूरा होने के बाद मातेश्वरी जी सीटी बजाती थी, वो जो विसल होता है ना, जो पुलिस वाले के पास होता है जिसके अंदर कॉर्क रहता है, मातेश्वरी जी फ्लीट बूट पहनकर, कपड़े के बूट पहनकर सीटी बजाती थी और हम सब भी जितने भी बाबा के बच्चे थे थोड़े ही होते थे, वो फ्लीट बूट पहनते थे, बाबा भी साथ चलते थे, हम सुबह वॉकिंग के लिए जाते थे। उन दिनों माउंट आबू की आबादी बहुत थोड़ी थी और माउंट आबू में कभी एसी तो क्या, पंखे भी नहीं चलते थे, बिल्कुल मौसम और तरह का था। तो क्लास के बाद बाबा हमको ले जाते थे, तो सड़कें खाली होती थी, सड़कों पर कोई कोई पादरी, क्रिश्चियन पादरी या नन, वो अपना पैदल कर रहे होते थे शांति में, तो बाबा उनको देखकर कहते थे, बच्चे नन बट वन, नन बट वन। तो नन बट वन के दो मतलब होते हैं कि एक तो और दूसरा कोई नहीं, एक बाबा। लेकिन वो नन को, क्रिश्चियन की भी नन होती है, तो उनको देखकर बाबा कहते थे, देखो बच्चे ये कितनी शांति में चलते हैं। तो मजा ये आता था कि बाबा का हाथ जो है बच्चे बारी बारी पकड़ते थे, बाबा आगे आगे चलते थे, तो पांच छह गज के लिए एक बच्चे ने हाथ पकड़ लिया, उसके बाद दूसरे ने पकड़ लिया, तो हमको बाबा का हाथ पकड़कर चलने में अति इंद्रिय सुख मिलता था, और बारी बारी सब बच्चे बाबा का हाथ पकड़कर पैदल करने जाते थे। फिर क्या होता था कि बीच में बाबा खड़े होकर मुड़कर पूछते थे, शिव बाबा याद है, शिव बाबा याद है। इस प्रकार बाबा हमें पैदल भी कराते थे और रूहानी ड्रिल भी कराते थे, और ये पूछते रहते थे कि शिव बाबा तुमको याद है। इसी प्रकार से शाम को जो चाय होती है, प्राय तौर पर बाबा किसी न किसी पहाड़ी पर ले जाते थे, और किसी न किसी नए रास्ते से नई पहाड़ी पर ले जाते थे, वहाँ चटाई आदि ले जाते थे बिछाने के लिए, और चाय का सामान वगैरह भी सब भाई बहन ले जाते थे, और वहाँ बैठ करके जहाँ खाली साफ जगह देखते थे वहाँ बैठ के चाय पीते थे, बाबा ज्ञान भी सुनाते थे। तो खास बात उसमें ये थी कि रास्ते में बड़े बड़े पत्थर होते थे, तो पत्थरों के ऊपर चलना होता, तो बाबा सबसे आगे चलते थे और कहते थे, बच्चे शिव बाबा को याद करके चलना। तो हम भी सोचते थे कि कहीं पत्थर से पांव खिसला तो क्या हो जाएगा, गिर जाएंगे, घिसर जाएंगे, तो हम भी शिव बाबा करते पत्थर पर बाबा के पीछे पीछे कदम पर कदम करके चलते थे, और इतना बाबा की याद में चलते थे जैसे कोई पानी का गिलास भर के बाबा की याद में चले तो पानी नहीं गिरता, तो कोई गिरता नहीं था, और इस तरह हमारी बाबा की याद भी पक्की हो जाती। शाम के समय फिर बाबा बच्चों को सैर करने ले जाते थे नक्की लेक पर। तो नक्की लेक आप लोगों ने देखा होगा, तो नक्की लेक पर आगे जा करके एक राम मंदिर है, तो राम मंदिर के सामने जमीन होती थी खाली, अब तो वहाँ शायद बोट्स क्लब वगैरह बन गया है, किश्तियों का ऑफिस है, उस वक्त अच्छी खासी खाली जमीन होती थी, बोट्स भी होते थे, वहाँ जा करके बाबा हमको ग्राउंड में बिठा देते थे, और राम मंदिर के पुजारी को भी बुला लेते थे, वो भी बड़ा खुश होता था, बाबा के पास आके बैठ जाता था। उस समय बच्चे बाबा को किसी ने कविता बनाई हुई हो, किसी ने गीत बनाया हुआ हो, वो सुनाते थे। तो कभी तो बाबा बच्चों को खुश करने के लिए पूरा सुन लेते थे, और कभी बाबा कहते थे, बच्चे इसमें क्या रखा है, बाबा को याद करो, उसमें कमाई होगी। तो मैंने भी एक गीत बनाया था, सुनो सुनो आए दुनिया वालों शिव बाबा की अमर कहानी। उस वक्त एक गांधी जी पर गीत चला था, बापू जी की अमर कहानी, तो उसी तर्ज पे मैंने ज्ञान का बहुत अच्छा गीत बनाया था, तो मैं शर्म करा करता था, तो वहाँ जाकर मैंने बाबा को कहा मैं गीत सुनाता हूँ। तो मैं गीत सुनाने बैठ गया, एक पैरा सुनाया तो मुझे शर्म आ गई या क्या हुआ, मेरी बोलना बंद हो गया, यानी गीत बीच में ही रुक गया। अब मैं सोचा क्या करूं, फिर मैंने बाबा से दृष्टि ली, फिर मेरे में ताकत आ गई, फिर मैं गीत सुनाने लगा। इस प्रकार से वहाँ बाबा हमको रोज लगभग ले जाते थे, थोड़ी देर बच्चों को घुमाते थे और साथ साथ ले आते थे, अर्थात उस वहाँ पे हमें बाबा का संग मिल जाता था। और उसके पश्चात जो है कई प्रकार की पर्सनल घटनाएं भी हमारे साथ हुई हैं। एक तो यह है कि बाबा हर बच्चे का बहुत सम्मान करते थे, और जो भी बच्चा हो उसको ये महसूस होता था कि मेरा बाबा विशेष है, जैसे कृष्ण और गोपियों का दिखाते हैं ना, मेरा ही बाबा विशेष है। तो एक बार हमें मधुबन से वापस दिल्ली जाना था, तो हम क्या करते थे कि दिल्ली जाने से पहले ही उन दिनों बस में रिजर्वेशन हो जाता था, माउंट आबू से नीचे बस आती थी, चार आना देकर उसका एडवांस रिजर्वेशन हो जाता था। तो मैंने अपना और मेरी माताजी थी, हमने अपने दोनों का रिजर्वेशन कराया हुआ था। तो कहीं मेरी माताजी बाबा से मिलने गई तो उन्होंने बताया कि बाबा हम दो चार फलाने दिन वापस जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा अच्छा वापस जा रहे हो, कैसे जा रहे हो? तो उसने कहा कि मेरे बेटे ने मेरी हमारी बस में रिजर्वेशन कराई है। बाबा ने कहा बस में बुलाओ उसको। मैं गया, बाबा बोले अरे तुम्हारी माँ है, इसने तुम्हें बड़ा किया है, टैक्सी में जाओ। अच्छा तो मैं इसका ठीक है, टैक्सी जरा महंगी होती थी तो मैंने टैक्सी में बुकिंग करा दी। पर मेरी माता को बड़ा खुशी हुई कि देखो मेरा लौकिक बच्चा है, ये मुझे बस में ले जा रहा था और बाबा मुझे टैक्सी में भेज रहा है। बात तो छोटी है लेकिन बाबा का हर आत्मा को विशेषता दिखाना ये बहुत एक खास बात है। इसी प्रकार से मुझे गोभी, जो फूल गोभी होती है वो खाना पसंद था। वैसे बाबा फूल गोभी को बहुत लाइक नहीं करते थे लेकिन क्योंकि मुझे पसंद था और बाबा को पता था तो किसी उस जमाने में गोभी सीजन में ना भी हो तो होटलों वालों के लिए गोभी लाया करते थे दुकानदार, क्योंकि होटल वाले तो महंगी सस्ती चीज रखते हैं। तो बाबा खास मेरे लिए गोभी मंगवाते थे और खास बनवाते थे। तो मुझे ऐसा खुशी फील होती थी कि देखो ये बाबा तो बच्चों की जैसे हर छोटी बड़ी इच्छा, पहले तो बाबा को पता लगे कि मैं ये चीज खाता हूँ, फिर बाबा उसको मंगवा के देते थे। अच्छा इसी प्रकार से कोई ये समझता हो कि बाबा को शायद किसी बात का पता ना लगे, लोग कहते हैं बाबा कहते हैं मैं तो अंतर्यामी नहीं हूँ, मैं तो बाहर जामी हूँ, शिव बाबा अंतर्यामी है। लेकिन बाबा की दृष्टि, बाबा का दृष्टिकोण, बाबा का इतना दूरदृष्टि था, फार साइटेड था कि बाबा व्यक्ति को देखते ही पहचान जाते थे। एक बार क्या हुआ, जो भी परिवार उस समय आते थे उनको एक लाटरी मिलती थी। लाटरी ये मिलती थी कि जितना समय वो मधुबन रहते थे उसमें एक बार उनको बाबा के साथ टेबल पर भोजन करने का अवसर मिलता। प्रवृत्ति मार्ग वालों को, क्योंकि उन दिनों पूरे प्रवृत्ति मार्ग वाले परिवार थोड़े थे और बाबा जो भी पूरा प्रवृत्ति मार्ग वाला परिवार होता था उसको विशेष महत्व देते थे, उनको अन्य सेंटरों पर जाने को कहते थे। क्योंकि उन दिनों ये प्रसिद्ध था कि ब्रह्मा कुमारियां घर बार फिटाती हैं, तो ये सिद्ध करने के लिए घर बार फिटाती नहीं है बल्कि घर बार बनाती हैं, पूरे परिवार ज्ञान में चलते हैं। इसलिए बाबा प्रवृत्ति मार्ग वालों को, मान लो हम बॉम्बे गए तो हम तो कहेंगे पूना भी जाओ, सेंटरों पर जाओ, तो प्रवृत्ति मार्ग के परिवार को बाबा अपने साथ भोजन करवाते थे टेबल पर। तो हुआ क्या कि आम का सीजन था और मुझे मेरी माताजी को पता था कि इसको आम बहुत पसंद है, तो सबको भोजन बांटा गया, साथ साथ एक एक आम भी दिया गया। अच्छा तो मेरी माता ने क्या किया, टेबल के नीचे से मेरे साथ ही बैठी थी, बहुत धीरे से अपना आम टेबल के नीचे से मेरी तरफ ट्रांसफर कर दिया। ये उसको पता था ये आम खाता है। अच्छा हमने सब ने समझा बाबा ने नहीं देखा, भोजन होता रहा, भोजन होने के बाद पूरा हो गया। जब भोजन पूरा हो गया तो बाबा की ब्राह्मणी थी लच्छू बहन, तो बाबा ने कहा लच्छू एक टोकरी में आम लाओ। वो टोकरी में पांच छह आम ले आई तो बाबा ने मुझे कहा लो बच्चे ये तुम ले जाओ। तब मैं समझ गया कि बाबा ने देख लिया था, हम समझे बाबा ने नहीं देखा, इसलिए बाबा हमको आम देके मतलब संतुष्ट कर रहा। तो इस तरह की बाबा की नजर थी। ओम शांति। तो इसी प्रकार से बहुत सारी बातें हमने देखी। दिल्ली के एक भाई थे, शेला राम जी बड़े बुजुर्ग थे, तो उनको शौक था कि यज्ञ में कोई भी चीज स्पेशल भेजनी है तो खुद जाते थे और चीज लेके आते थे। तो एक बार उन्होंने ऑरेंजेस संतरे की एक पेटी मधुबन में भेजी। दिल्ली में एक स्थान है सराय रोहिला, छोटा स्टेशन है, वहां से कोई भी चीज गार्ड को दे देते थे तो आबू रोड स्टेशन पर पहुंच जाती थी। तो वो संतरे वास्तव में बहुत ही सुंदर चमकदार लाल थे, लेकिन वो कोल्ड स्टोरेज के थे। तो चेला राम जी ने देखा नहीं, तो बाबा ने जब संतरे आए तो पेटी खुलवा के एक संतरा खुलवाया, तो बाहर से बहुत ही सुंदर था, अंदर से उसमें नीला नीला वो लगा हुआ था, फाड़ियां और तरह की थी, मतलब वो खराब थे। तो बाबा ने ऐसे नहीं किया कि चलो इनको फेंक दो, बाबा ने वही पेटी वापस दिल्ली भेज दी। तो चेला राम जी ने जब खोली तो उन्होंने देखा, तो इस तरह बाबा शिक्षा भी दिया करते थे कि बच्चे को, क्योंकि वो बहुत मेहनत से जाके हर बार नई चीज फल ला के भेज, उसको ऐसे ये वैसे ही लिखेंगे कि बच्चे तेरे संतरे जो है ठीक नहीं थे, उसकी बजाय वो चेला राम जी खुद देखें ताकि सारे जीवन के लिए उनको ध्यान रहे कि मैं फल को खोल कर ऐसे ऐसे करके। तो बाबा शिक्षा भी इसी प्रकार से देते थे, जो पक्की दूसरे के दिल में आ जाए, घुस जाए, और वो सारी जिंदगी आगे के लिए उस शिक्षा को ग्रहण करे। इसी प्रकार हमारे साथ भी होता था कि एक बार मुझे याद है कि हमारे लौकिक पिताजी ने शरीर छोड़ा, तो हमारे लौकिक पिताजी ऑफिसर थे, अब मैं भी ऑफिस में ही काम करता था। तो जब शरीर छोड़ा तो उनके ऑफिस के 30 ड्रेस थे, ऑफिस के ड्रेस जाने आने के, और वो मुझे बिल्कुल फिट था ड्रेस। तो मैंने सोचा कि दुनिया वाले ब्राह्मण को दान दे देते हैं, मैं भी ब्राह्मण ही हूँ तो मैं वो ड्रेस रख लेता हूँ, मैं काम में लगाऊंगा, यज्ञ का खर्चा बच जाएगा। तो मधुबन में आया मैं, तो मधुबन में तो कोई ऑफिस की ड्रेस कोट पैंट पहनता नहीं है, लेकिन वापस जाने के दिन हम लोग, क्योंकि फिर कोले वाली ट्रेन में जाना होता है, तो लास्ट दिन बाबा से मिलने से पहले ऑफिस की ड्रेस वो मैंने पहनी हुई थी पिताजी की। तो जब मैं बाबा से विदाई लेने गया तो बाबा भी बच्चों के लिए कोई ना कोई सौगात देते थे स्नेह की, तो बाबा ने मुझे एक हांगकांग से आई हुई रेडीमेड कोई ब्लू शर्ट थी वो मुझे दी कि बच्चा तो ये तुम्हारे लिए रखी है। तो मैंने जैसे कोई बच्चा दिखाता ना अपने पिता को अपनी कार्रवाई, तो मैंने कहा बाबा ये देखो, ये मेरे पिताजी लौकिक की ड्रेस है, मुझे कितनी फिट है, और मैंने ऐसे 30 ड्रेस पिताजी के रखे हुए हैं ताकि मेरे काम में आ जाएंगे। तो बाबा मुस्कुराए और बोले बच्चा लौकिक पिता का पहनेगा तो लौकिक पिता याद आएगा, बाबा का पहनेगा तो बाबा याद आएगा। तो मैंने नम्रता से सिर नीचा करके बाबा की ड्रेस तो ले ली, वो तो मैंने लेनी थी, और मैंने फैसला किया कि बात तो ठीक है, जब भी मैं लौकिक पिता की पहनता हूँ याद तो आता है, और सारा दिन पहननी रहती है तो समझो पिता भूलता ही नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म में तो मुझे याद रहता है। इसलिए हमारे यज्ञ में शिक्षा भी देते हैं, कोई चीज लेनी हो तो यज्ञ से लो, आपको कहीं से गिफ्ट मिला भी है तो यज्ञ में दे दो, वहां से लो, ताकि लगे कि यज्ञ का हम पहन रहे हैं। खैर, तो मैंने फील किया और अगली बार मैं मधुबन आया तो 30 के 30 ड्रेस का बंडल बना के मैं यज्ञ में छोड़ गया कि चलो मैं अब इसको नहीं पहनूंगा, सड़क पे तो फेंकना नहीं था, छोड़ गया। अब मधुबन में भी कौन सूट बूट पहनता है। तो अगली बारी मैं आया तो धोबी घाट में एक भाई कपड़े धो रहा था और उसने मेरे पिताजी की पीली ब्लू शर्ट पहनी हुई थी। तो मैंने ओह देखो मेरे पिताजी की पीली ब्लू शर्ट, तब मुझे ख्याल आया कि कितनी गहरी बात है, मैंने उस अपने पहनने से छोड़ दिया, यज्ञ में सरेंडर भी कर दिया, अब किसी दूसरे ने पहना हुआ है तो भी मेरे मन में संकल्प है कि पिताजी की भूषण, उसका भूत अभी भी मेरे मन में है। अगर मैं रोज वो 30 ड्रेस पहनता रहता तो कितने समय में अलौकिक बाप को याद करते हुए भी सूक्ष्म में लौकिक की याद मेरे अंदर रहती। तो इस प्रकार की भी बाबा हमको शिक्षाएं देते थे, वो फिर हमारे अंदर पक्का पक्का घर कर जाती थी। एक घटना मुझे और याद आती है कि बाबा का प्यार जो है, बाबा का प्यार तो बहुत ही था। मुझे याद है ट्रेनिंग सेंटर एक बना था पांडव भवन में, पहले धीरे धीरे बाबा कंस्ट्रक्शन करते थे, हम पूछते भी थे तो बाबा कहते थे बच्चे ये अगले सीजन में होगा, बच्चे ये अगले सीजन में होगा। तो धीरे धीरे बाबा कंस्ट्रक्शन करवाते थे। तो जब बाबा ने ट्रेनिंग सेंटर की कंस्ट्रक्शन करवानी शुरू की, जिसमें के मधुबन में ट्रेनिंग शुरू होनी थी, टीचर्स को आना था, तो जो भी बाबा इंस्पेक्ट करते थे, कमरे बन रहे होते थे, तो बाबा जाके ऐसे प्यार से कहते थे यहाँ मेरे बच्चे दुनिया से थके हुए आएंगे, यहाँ आराम करेंगे। कभी कुछ कहते थे, कभी कहते थे देखो बच्चे अब दुनिया की लौकिक से हटकर यहाँ ट्रेनिंग लेंगे और दुनिया को बाबा का परिचय देंगे। यानी बाबा उसमें इतना वाइब्रेशन और इतना स्नेह भरते थे जो बात ना पूछो। तो इस प्रकार से बाबा हर चीज में ना, कोई भी चीज होगी। मुझे याद है एक बारी मैं सहारनपुर गया था, तो सहारनपुर में बाबा ने एक्सपेरिमेंटल तौर पे एक स्थान बनवाया था जहाँ पर 3-4 युगल इकट्ठे रहते थे, जिन्हें 3-4 युगलों को वो स्थान में रखा गया था और खुला स्थान था कि तुम रहो। अच्छा, तो उस वहाँ पर बहुत खुली जगह थी, तो उन्होंने साइड में उस जगह के जैसे केले जैसे एक छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, जिसमें एक फूल निकलता है जो वेलवेट जैसा होता है, भिन्न भिन्न रंगों का मोटा, वो लगे हुए थे। तो बाबा सहारनपुर गए थे तो बाबा ने कहा बच्चे इसका क्या फायदा, इसकी जगह तुम असली केले लगाओ, तुम्हारे काम आएंगे। उन्होंने बहुत केले लगा लिए, इतने केले हो गए जो बात ना पूछो। तो मैं सहारनपुर गया था तो उन्होंने मुझे खूब केले लगे हुए थे, बोले ये मधुबन ले जाओ, कच्चे केले थे, मैं ले आया। तो मैंने क्या किया कि बाबा को केले की जैसे आलू की टिक्की होती वो बना के खिलाऊंगा। तो मैं किचन में केला उबाल के और उखली में वो जो केला था उसको कूट रहा था। तो बाबा तो हर जगह आते थे, इंस्पेक्शन करते थे, तो मैं कूट रहा था। बाबा बोले बच्चे क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा आपके लिए मैं केले की टिक्की बनानी चाहता हूँ। तो बाबा बोले तुम लच्छू को दे दो, वो तुम्हें वो बना देगी। तो बाबा ये भी देखते थे कि कौन से सर बच्चे से किचन में काम करवाना है, कौन से बच्चे से दूसरी तरह की सेवा करानी है। तो मैंने फील किया कि बाबा ऐसे देखते हैं। और बाबा तो हर चीज का ध्यान रखते थे। अभी आप माउंट आबू जाएंगे तो जो बाबा का कमरा है, पहले वो आधा होता था, एक जगह वहाँ कुर्सी रखी है वहाँ तक होता था, फिर उतना ही बाबा की गद्दी थी और नीचे बैठने की गद्दी थी, सामने बेड था बाद में, और दूसरा हिस्सा जो है उसमें फल रखे जाते थे। जो भी यज्ञ में फल आते थे वहाँ स्टोर किए जाते थे, और बाबा खुद सुबह उन फलों को देख के जो फल पक गए हैं वो बच्चों को बांटने के लिए दे देता था। तो इतना छोटा बाबा का कमरा होता था। हर चीज का बाबा चीज का नुकसान ना हो जाए ध्यान रखता था। और कभी हमेशा कहते थे अगर कोई चीज मान लो आपकी घड़ी गिर गई या कुछ, तो बच्चे तुम्हारा योग कम है, अगर पूरा योग में रहोगे तो कोई नुकसान हो नहीं सकता। फिर बाबा कहता था ड्रामा। अच्छा, अब आप देखिए कि बाबा बच्चों को कितना स्नेह देते थे। तो भोजन के बाद बाबा, 5-4 बच्चे थे, एक मैं था, एक बाबा का लौकिक बच्चा नारायण था, दो और थे, तो बाबा हमको ताश खेलने के लिए, बैलाने के लिए अपने कमरे में बुला लेते थे और 15-20 मिनट ताश खेलते थे। तो पहली बार जब बाबा ने मुझे बुलाया तो पूछा, बच्चा तुमको ताश खेलना आता है? तो मुझे तो आता नहीं था। मैंने कहा, बाबा मुझे तो नहीं आता। बोले कि क्यों, तुम ऑफिसर हो, ऑफिसर क्लब में नहीं जाते क्या? तो मैं ऑफिसर क्लब तो था, पर मैं वहां क्या करना जाके। तो मैंने कहा, बाबा मैं तो एक साल में एक बार जाता था, हम लोगों को अकाउंट्स के, वहां भी मैं अकाउंट्स ही करता था, हमको वहां स्टॉक गिनना होता हर चीज का, वैसे तो मैं नहीं जाता। बाबा बोले, तुम बुद्धू हो। फिर मुझे ताश खेलना सिखाया, जो भी बाबा खेलता था, आसान सा खेल होता था। तो हम रोज बड़े खुश होके वेट करते थे भोजन के बाद कि बाबा के साथ ताश खेलेंगे। अच्छा, जाते थे। उसमें मैं क्या नोट करता था कि बाबा का लौकिक बच्चा नारायण थे, वो भी आते थे, उनका बहुत स्नेह था यज्ञ से। तो बाबा मुझे तो अपने साथ गद्दी पर बैठाते थे, छोटी सी गद्दी थी अपने, और नारायण को सामने बिठाते थे। तो मुझे अंदर बड़ी खुशी होती थी कि देखो, अपने लौकिक बच्चे को बाबा ने वहां बैठाया है और मुझे अपने पास बैठाया है। बड़ी खुशी होती थी। था तो मैं बच्चा ही, मेरा 21-22 साल का था, लेकिन फीलिंग बहुत अच्छी बाबा देता था। अच्छा, तो रोज हमको आदत पड़ गई थी ताश खेलने की। तो बाबा के साथ ताश खेलना है तो बड़ी खुशी होती थी। और खास बात यह थी कि हमेशा बाबा ही खेल में जीतता था और हम लोग उससे बाबा फिर नाक रगड़वाता था ऐसे कि हम हार गए हैं। हमें उसमें भी खुशी होती थी, चलो बाबा नाक रगड़वा रहा है। तो एक दिन क्या हुआ कि बाबा ने नहीं बुलाया। तो मैं बाबा की कॉटेज के बाहर, कमरे के बाहर घूम रहा था कि बाबा ने बुलाया नहीं। अचानक लच्छू बहन बाहर निकली, तो बाबा की ब्राह्मणी थी। मैंने कहा, लच्छू बहन बाबा ने बुलाया नहीं। कहती, अच्छा ठहरो ठहरो, मैं पूछ के आती हूँ। तो उसने बाबा से पूछ के आई, कहती बाबा कहते अपने साथियों को बुला लो। तो मैं खुशी खुशी उन सबको बुला के हम बाबा के कमरे में चले गए। तो उस दिन बाबा गद्दी पर बैठे नहीं थे, कंबल ओढ़ के थोड़ा सा लेटे हुए थे, जैसे पत्र लिखने के फोटो में है ना, बाबा लेटा हुआ इस तरह से थे। तो बाबा ने ताश खेलना शुरू किया, तो पहली बार ही बाबा हार गया। तो हमने कहा, बाबा हार गया, अब बाबा से तो हम ऐसे नहीं करा सकते, सोचने में पड़ गए। पर हमने देखा कि बाबा लेटा हुआ थोड़ा सा। तो मैंने कहा, लच्छू बहन बाबा लेटे हुए हैं, कंबल पहना ओढ़ा हुआ है, हमें बुलाया भी नहीं, बाबा की तबीयत तो ठीक है? बोली, बाबा को 102 बुखार है। अब देखो, 102 बुखार है इसीलिए बुलाया नहीं। परंतु जब हमने ऐसा हल्का सा कहा तो स्नेह के कारण बाबा ने बुला लिया। अब ऐसा बाबा आपने कभी दुनिया में ना देखा होगा ना सुना होगा, जो बच्चों के लिए समझो कि इतना इतना ख्याल रखता। तो हर चीज जब हम बाबा की देखते थे तो हमारे अंदर जैसे एक प्रकार के रोंगटे, बाद में भी अब हम जब याद करते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब मकान बन रहा था तो उसमें मजदूर भी काम करते थे और मिस्त्री भी काम करते, राज उसको राज कहते हैं मिस्त्री को। तो बाबा ने सब बच्चों को कहना शुरू कर दिया, बच्चे खड़े थे, तुम राज हो तुम मजदूर हो, तुम राज हो तुम मजदूर हो। यानी जैसे जैसे बच्चा जिस तरह की सेवा करता था उसको उस तरह से बयान करते रहते थे बाबा। और फिर हम देखेंगे कि सुबह सुबह बाबा समझो 3:30 बजे बाबा के कमरे में जाओ तो बाबा, उधर ना रेडियो होता था, तो बाबा ने रेडियो लगाया हुआ है और बाबा बैठे हैं, ध्यान मगन है। तो हम कहते थे, और रेडियो में चाइना का कोई आवाज आती थी, चाइनीज की, चाइनी का कोई स्टेशन था। तो हमने कहा, बाबा ये तो चाइनी में बोल रहे हैं, तो बहन बोल रही थी, आप तो इसको समझते भी नहीं चाइनी को। फिर तो बाबा बोले, बच्चे थोड़ा इसकी आवाज मीठी है ना, तो थोड़ा बोल देती है तो बाबा को अच्छा लगता है, तो बाबा अपना ध्यान लगाता, थोड़ी रिकॉर्ड तो नहीं बजाता, ये बजा लेता। इस प्रकार से बाबा सिंपल ढंग से भी करते थे। अब ऐसे तो बाबा कहते हैं कि मैं बच्चों की लौकिक का कोई ध्यान नहीं, मैं तो ज्ञान सुनाने आया हूँ, लौकिक तुम्हारा कुछ भी हो उसमें मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। साधु महात्माओं के पास तो लोग लौकिक काम में ही लेके जाते हैं, बाबा मैंने विदेश जाना है, जाऊं कि नहीं जाऊं, बाबा मैंने दुकान खोलनी है, बिजनेस करूं, तो बाबा कहता था इन चीजों से बाबा का कोई तल्लक नहीं है। तुम्हारा शारीरिक रोग भी है तो डॉक्टर के पास जाओ, बाबा तो रूहानी ज्ञान देता है। लेकिन मैंने देखा कि बीच में ना बाबा जो अनन्य होता है उसका बाबा लौकिक में भी बहुत उसका ध्यान रखता। अब क्योंकि मैं नौकरी करता था तो नौकरी करने में क्या होता था कि मेरा कोई खर्चा तो था नहीं, मैं अपने मेरे घर में सेंटर भी चलता था तो तनख्वाह मिलती थी ज्यादा, तो मैं उसके पैसे बचा लेता था। तो पहली बार क्या हुआ, नौकरी करने को मुझे बाबा ने कहा था। जब मैंने इम्तिहान पास किया चार्टर्ड अकाउंटेंट का, तो मैंने दिल्ली में चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग वकालत की प्रैक्टिस का दफ्तर खोलते हैं, तो मैंने वहां एक बहुत मेरे पिताजी का अच्छा संपर्क था, तो मैंने बहुत अच्छे बिजनेस एरिया में ऑफिस खोल लिया। समझो कि 1.25 साल मैंने ऑफिस चलाया। फिर मैं मधुबन गया तो पहले ही बाबा ने वो जो स्थान है बाहर जहां मिलते हैं निर्वैद जी के ऑफिस के बाहर, उसको हम लोग चांदनी चौक कहते हैं, क्योंकि दिल्ली में चांदनी चौक है मिलने की जगह, वहां थड़े लगे हुए हैं। तो मैं गया तो बाबा ने पहले कहा, बच्चे तुमने इम्तिहान पास कर लिया? मैंने कहा हाँ बाबा कर लिया। क्या करते हो? तो मैंने कहा बताया, मैंने कहा खुशी से बाबा ऐसे ऐसे मैंने प्रैक्टिस शुरू किया, बहुत अच्छा बिजनेस एरिया है। तो बाबा मुस्कुराए और बोले थोड़ा नजदीक आओ। नजदीक तो मैं था ही, और नजदीक गया, बोले जैसे मुरलियों में कहते हैं, देखो बच्चे अगर तुम अपनी वकालत करोगे तुम्हारे ऊपर सारा दिन ख्याल रहेगा अपने काम का, भोजन भी करोगे तो अपना क्लाइंट अपना काम याद आएगा, इसलिए अच्छा है तुम कोई सरकारी नौकरी कर लो, काम किया अपना समय के बाद वापस आ जाए। तो उस वक्त बाबा का कहना, अब बाबा की क्या पावरफुल पर्सनैलिटी थी है? तो बाबा ने कहा तो मैंने उसी वक्त खड़े खड़े मन में सोच लिया कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस बंद और कोई नौकरी करूंगा। तो दिल्ली आकर मैंने दोबारा अपने ऑफिस में नहीं गया, अपने छोटे भाई को कहा कि तुम सब अकाउंट्स वापस कर दो जिसके लिए हुए हैं, फर्नीचर मैंने एक सेंटर में भेज दिया, खुद मैंने अखबार देखा फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ नौकरी कहाँ है। तो जो पहली चार्टर्ड अकाउंटेंट की नौकरी मुझे दिखी उसमें मैंने हाथ से लिखकर एप्लीकेशन भेज दिया। मुझे ये भी नहीं पता था कि टाइप कराना होता है एप्लीकेशन। अब क्योंकि बाबा के महावाक्य थे, बाबा की शक्ति थी, तो मुझे इंटरव्यू भी आ गया। अच्छा, अब इंटरव्यू आ गया, बड़ी लंबी कहानी है कि मेरा सिलेक्शन हो गया आदि, वो बाबा ने कराया। जो अभी मैं बात कर रहा था पैसे की, तो बाप मुझे फर्स्ट तनख्वाह मिली, तो जैसे लोग खुशी से अपने गुरु को भेज देते हैं, तो मैंने फर्स्ट तनख्वाह का चेक बनाकर मधुबन भेज दिया। बाबा ने वो चेक रजिस्ट्री पोस्ट से मैंने भेजा था रजिस्टर्ड पोस्ट से वापस कर दिया। अब मैं बड़ा हैरान कि बाबा ने चेक वापस कर दिया, क्योंकि मुरलियों में बाबा कहते थे बाबा सराफ है, बाबा जिसका सफल करना चाहे करता है, जिसका नहीं करता। तो मैंने कहा ये तो बाबा ने चेक वापस कर दिया। फिर मैंने एक लंबा चिट्ठी बाबा को लिखा कि आपने मुझे कहा था नौकरी कर लो, सरकारी नौकरी कर लो, सरकारी नौकरी की कमाई तो ऑनेस्टी की होती है, और मैंने यज्ञ में भेजा आपने वापस कर दिया, क्या आप इसको सफल नहीं करना चाहते आदि आदि। मैंने रजिस्टर करके फिर भेज दिया। तो फिर बाबा ने लिखा कि बच्चे इस बारी तो बाबा ले लेता है, पत्थर पाया हर्षाया, आगे से नहीं भेजना, तुम बाबा के बच्चे हो, वहां ही सेवा में पैसा लगाते रहना। अच्छा, ये तो एक बात हो गई। अब फिर भी मेरे पास पैसे बच जाते थे, तो मैंने क्या किया, कि अन्य कंपनियों में फिक्स्ड डिपॉजिट होते हैं, उसमें जरा ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। तो मेरे ऑफिस में जो मेरा असिस्टेंट था, उसका कोई रिश्तेदार दिल्ली में बहुत मशहूर इस कंपनी में काम करता था जो शेयर और फिक्स डिपॉजिट में डील करती है। तो उसके थ्रू मैंने अच्छी अच्छी कंपनियां देख के जो एक्स्ट्रा पैसे थे मैं जमा करा देता हूँ। मैंने ब्रह्मा बाबा को बताया हुआ था कि बाबा ये मेरे, जब मैं जाता था कि ये फिक्स डिपॉजिट मैंने कराया हुआ। उन दिनों में एक बहुत बड़ी कंपनी निकली थी, वो उसका नाम था जयंती शिपिंग कंपनी। तो उसका एम था समुन्द्र के जहाज बनाना, क्योंकि भारत में अनाज बहुत इंपोर्ट करना पड़ता था अमेरिका से, रशिया से, तो वो जहाज का बहुत खर्चा आता था अनाज का, गेहूं वगैरह का। तो उस कंपनी के मालिक ने ये प्लान बनाया था कि हम जापान से जहाज बनवाएंगे इंस्टॉलमेंट पर, और उन जहाज में भारत का अनाज जाएगा तो वो खर्चा बच जाएगा। उसका प्लान बहुत अच्छा था और उसकी पत्नी नेहरू जी को जानती थी, तो उन्होंने भी उसको पास कर दिया। तो बहुत बड़ी कंपनी जयंती शिपिंग कंपनी, बहुत बड़े बड़े कैलेंडर, बहुत प्रसिद्धि थी उसकी। तो मैंने उसमें भी शेयर वो ले लिए फिक्स डिपॉजिट। अच्छा, तो बाबा को मैंने बताया था कि बाबा ये मेरे फिक्स डिपॉजिट जयंती शिपिंग कंपनी में भी हैं। वो कंपनी का मालिक फ्रॉड था, धोखेबाज था। उसने मतलब सारा पैसा पूसा इकट्ठा करके कंपनी को दिवालिया बनाना था। तो क्योंकि मेरे असिस्टेंट उस कंपनी जो इन्वेस्ट करती थी उसका रिश्तेदार था, उसने मुझे पहले ही बता दिया कि भाई साहब इसमें से पैसे निकाल लो। तो मैंने पैसे निकाल लिए। फिर भी जब मैं मधुबन गया तो बाबा ने मेरे से पहला प्रश्न पूछा, बच्चा तुम्हारे जयंती शिपिंग कंपनी में पैसे तो इसका क्या हुआ? तो मैंने कहा बाबा मैंने निकाल लिए। तो मैंने देखा कि बाबा को कितना कंसर्न था कि मैंने वहां पैसे रखे हुए हैं। बाबा ने न्यूज में पढ़ा होगा कहीं, बाबा मोटी मोटी न्यूज तो पढ़ते थे, 5-10 मिनट रेडियो भी थोड़ी सी सुन लेते थे। तब मैंने देखा कि बाबा लौकिक का भी, जो बच्चा बाबा की श्रीमत कोई खास बात में एक बारी जिंदगी में मान ले, जैसे मैंने बाबा की श्रीमत के बच्चे तुम प्रैक्टिस छोड़ के नौकरी कर लो मान ली, बाबा का वायदा है कि सारी उम्र लाइफ उसका मैं खास ध्यान रखूंगा। तो ये मेरा अनुभव है कि बाबा ने उसके बाद चाहे मेरा लौकिक काम हो, चाहे मेरा शरीर का कुछ हो, कुछ भी हो, बाबा मेरा खास ध्यान रखता। तो ये उसका मैंने कारण देखा। बाबा कहते हैं किसी महत्वपूर्ण जीवन के फैसले में आप बाबा से श्रीमत ले लो और उस पर चलो। मान लो किसी ने शादी करवानी है, किसी ने कुछ करना है, तो बाबा फिर उसकी लाइफ लॉन्ग ध्यान रखता। तो सचमुच ऐसा हमने फील किया, तो हर बात में बाबा ध्यान रखता है। बहुत सारी कहानियां किस्से हैं, लेकिन अभी इतना ही काफी है। आपका समय हो गया, तो बहुत खुशी हुई आप घाट के ऊपर वालों से मिलकर, है ना। तो बाबा कहता है दुनिया में घाट घाट का पानी पीते हैं, कितना हम भक्ति मार्ग में भटकते रहे, अब हम बाबा के गंगा घाट पर, सच्चे गंगा पर आ गए हैं, मधुबन में आ गए हैं जो महान तीर्थ है, जहां बाबा कहते हैं बाबा ने त्याग किया। कितना त्याग किया कि शरीर भी छोड़ दिया, अव्यक्त बन गए। किस लिए? कि मैं ज्यादा बच्चों की सेवा कर सकूंगा और मेरे बच्चे जैसे राजधानी में अगली पीढ़ियां आनी है वो अनुभवी बने, जैसे वानप्रस्थी अपने बच्चों को बिजनेस दे देता है। तो शरीर तक त्याग दिया बहुत पहले। यद्यपि समझते थे हम ब्रह्मा बाबा तो सारे रचना को रचेगा, सूक्ष्म रचना शुरू किया। फिर बाबा ने तपस्या ऐसी की, ऐसा माउंट आबू बनाया कि इसको कोई भी यहां आ जाए, बाबा की तपस्या, बाबा के बच्चों की तपस्या, वो ज्ञान ना भी समझेगा तो कोई अलौकिक स्नेह, कोई प्रेम, खास फीलिंग लेके जाएगा, यहाँ का वाइब्रेशन है, ये बाबा की तपस्या का वाइब्रेशन है। और सेवा, बाबा कहते हैं आप लोग फैला रहे हो, लेकिन शुरू शुरू में किस प्रकार की सेवा किसने करनी है, किस वर्ग को क्या करना है, महिलाओं को क्या करना है। आप बाबा की अव्यक्त मुरलियां पढ़ेंगे तो हर वर्ग को, रूरल वर्ग को बाबा रूलर वर्ग कहता है। ऐसा किया हुआ है तो बाबा ने त्याग तपस्या सेवा के जो बीज डाले हैं उसका फल हम सब बच्चे खा रहे हैं और फूल रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो अपना तो हमारा पुरुषार्थ है ही। बाबा ब्रह्मा बाबा का इतना अथाह वर्षा है, उस वर्षे से भी हम लोग माला माल हो रहे हैं। ओम शांति।